لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں. کہاں ہیں وہ؟ عاصم بھائی سے کہیے. عمران بھائی عاصم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سوره نساء کی آیت نمبر 25. پچھلے درس میں یہ بیان چل رہا تھا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے شادی کر لے. باندی سے نکاح میں نقصان ہے, بچہ غلام پیدا ہوگا, وہ باندی آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی, آپ اس کے پاس جانے کے لیے مالک کی اجازت مانگیں گے مالک سے, تو اس میں بہت سارے نقصانات ہیں. نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. لیکن زنا سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زنا مت کرو بلکہ کسی کی باندی سے شادی کر لو. اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے, فن کی ہو ہننا بھی اذنی اہلی ہننا, بس ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے, یعنی ان کے مولا اور آقا کی اجازت سے. وہ آتو ہن اجور ہن بالمعروف, اور بھلے طریقے سے عرف کے موافق ان کو ان کا مہر دو. محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان, یہ بہت اہم بات ہے کہ نکاح کرنے سے مقصد کیا ہونا چاہیے. یہ نکاح کی اتفاقی قیود ہیں, یعنی نکاح میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. محصنات غیر مسافحات, حفاظت مقصود ہو, ان کو اپنے نکاح میں لانا مقصود ہو. غیر مسافحات, محض اس کا لغوی مطلب ہے مسافحات کا لغوی معنی ہوتا ہے پانی بہانا. محض خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو. ولا متخذاتی اخدان, اور خفیہ آشنا, خفیہ دوستیاں, یہ بھی مقصود نہ ہو. یہ حقیقت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کرو, اپنی خواہش اس طرح سے پوری نہ کرو, نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری نہ کرو. نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان میں انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, اس کو بھی حرام قرار دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ شریف لوگ کہلاتے ہیں, خاص طور پہ یہ رواج یورپ میں امریکہ میں بہت ہے, جو برے لوگ ہیں وہ آج ایک کے پاس کل دوسرے کے پاس. عورتیں بھی روزانہ مرد بدلتی ہیں. جو ذرا زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ ایک بوائے فرینڈ رکھتی ہیں وہ عورتیں, اور مرد بھی ایک گرل فرینڈ رکھتا ہے. اس کو ذرا زیادہ شریف سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بوائے فرینڈ کے ساتھ وفا کر رہی ہے, اس کا ایک ہی بوائے فرینڈ ہے, اور یہ اس بوائے فرینڈ کی ایک ہی گرل فرینڈ ہے. وفا کرتے ہیں جب اس سے دوستی ہے تو کسی اور سے نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھی چونکہ وہیں سے سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, یہ کلچر ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ آپ کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ کی ایک گرل فرینڈ ہو. آپ فخر سے بتاتے ہیں کہ میری آپ کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں ہے, اور گرل فرینڈ بھی آپ سے اس نے سیٹنگ کی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. اب میں کیا بتاؤں, جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی بتاؤں گا نا. بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو وہی جو ہو رہا ہے اسی کو ڈیفائن کروں گا نا, وہی بتاؤں گا ہو رہا ہے. ہم کر نہیں رہے یا نہ کروا رہے ہیں لوگوں سے, نہ مشورے دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اسی ہونے والی چیز کو قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرو. قرآن نے بھی تو اس کو ہائی لائٹ کیا نا. مجھ پر اشکال کریں گے تو قرآن پہ بھی کریں گے, اللہ میاں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں قرآن مجید میں. कि गर्लफ्रेंड ना बनाओ। खिदन गर्लफ्रेंड को कहते हैं। गर्लफ्रेंड अलल ऐलान होती है और एक सहेलियां होती हैं चुपके से। पहले जमाने में चुपके अलल ऐलान गर्लफ्रेंड बनाने में बेइज्जती होती थी, लोग कहते थे जलील आदमी है, बुरा आदमी है, लड़कियों से दोस्तियां करता है। तो छुप छुपा के दोस्तियां होती थी, खुलेआम दोस्तियां करना और ज्यादा बुरा है। जैसे छुप के जिना करना यह भी गुनाह, खुलेआम जिना करना उससे बड़ा जुर्म। तो अल्लाह ने इन दोस्तियों पर भी पाबंदी लगा दी। गर्लफ्रेंड रखने की तुम्हें इजाजत, बोलो भाई, नहीं। बीवी से वफा होती है, इसके अलावा किसी से वफा नहीं। तो लिहाजा किसी औरत का, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, जब तक वो शौहर नहीं है कुछ भी नहीं है वो। और अगर किसी बॉय के, किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, तो जब तक वो बीवी नहीं है, कोई वफा के अहकाम, वादों के अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे, वो कुछ भी नहीं है, वो जानिया है, वो जानिया है, वो तवाइफ है, वो बदकिरदार औरत है। याद रखो, आपकी किसी लड़की से दोस्ती और आप उससे मुलाकातें करते हैं, गपशप करते हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं आपकी, कितना ही अच्छा इस पे लेबल लगा दिया जाए, कितना ही अच्छा उन्वान हो, शरीयत उसको तवाइफ कहती है, बदकिरदार कहती है, और आपको बदकिरदार, बदकिरदार मर्द, बदकिरदार औरत। ये पाक दामन मर्द नहीं है और वो पाक दामन औरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ने औरत से ख्वाहिश पूरी करने के इन तीनों दरवाजों को बंद कर दिया, सिर्फ एक दरवाजा खोल दिया कि बाकायदा निकाह होना चाहिए, बाकायदा निकाह। और निकाह में दो बुनियादी चीजें हैं जिसके बगैर निकाह होता नहीं है। निकाह में दो बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं दो चीजें। नंबर एक, गवाहों की मौजूदगी में ईजाबो कबूल हो और वक्ती ना हो, हमेशा के लिए हो। समझ में आ रही है बात? वक्ती ना हो बल्कि दाइम। वो अलग बात है कि आपस में इख्तिलाफात की बुनियाद पर तलाक की नौबत पहुंच जाती है, निकाह अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही खत्म। निकाह की मुद्दत पूरी कब होती है? जब दोनों में से एक मर जाए। समझ रहे हैं बात? दोनों जब तक जिंदा हैं, अगर तलाक हो जाए तो इसका मतलब ये निकाह अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले पहले खत्म हो गया। दोनों में से एक मर जाए तो इसका मतलब ये कामयाब शादी थी। मौत तक दोनों ने एक दूसरे को निभाया है, एक दूसरे से जो मुआहदा किया था उसको निभाया है। तो बुनियादी मकसद क्या होगा निकाह में और जिना में? बुनियादी फर्क, निकाह हमेशा के लिए होता है। नंबर दो, बाकायदा ईजाब व कबूल। अगर आपने गर्लफ्रेंड किसी को बना दिया हमेशा के लिए, तो चाहे हमेशा के लिए भी बनाए मगर वो निकाह नहीं है। उसको मुत्तखिदाती अखदान कहा गया है कुरान मजीद, क्योंकि ईजाब व कबूल नहीं हुआ। ईजाब व कबूल के मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया, वो कहे या उसका वकील कहे, मैंने कबूल किया। समझ रहे हैं बात? ये दो चीजें नहीं है। और ये भी ईजाब व कबूल भी किसकी मौजूदगी में होना चाहिए? असल मसला तो ये है कि असल सुन्नत तो ये है कि अलल ऐलान, सारी दुनिया को पता हो कि आज से फला फला की बीवी है, बन गई है। यहां एक जरा इल्मी नुक्ते की बात बताऊं, लोग आम तौर पे अपनी बच्चियों का निकाह या बेटों का निकाह करने के लिए रायवंड के इज्तिमा का इंतजार करते हैं कि रायवंड में होलसेल के हिसाब से निकाह होगा, वहां तो दो दो तीन तीन सौ निकाह होते हैं, या कराची इज्तिमा का इंतजार करते हैं। इसमें दो खराबियां हैं। रायवंड से हमें बहुत अकीदत है, इसमें कोई शुभा नहीं है। समझ रहे हैं बात? कराची इज्तिमा से हमें बड़ी अकीदत, अल्लाह हमें भी जाने की तौफीक दे, उसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक दे। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें दो गड़बड़े हैं। नंबर एक, इसकी वजह से निकाह की ताखीर करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इज्तिमा अगले महीने है, तो आप खामखा में निकाह में एक महीना ताखीर करेंगे कि भी रायवंड के इज्तिमा में हम निकाह करेंगे, जबकि शरीयत खैर में, खास तौर पे निकाह में गैर जरूरी ताखीर पसंद नहीं करती। जैसे जनाजे में ताखीर अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है ना। उलमा ने लिखा है ना कि जनाजे में इसलिए ताखीर की सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, फला भी आ जाए फला में आ जाए, जनाजा पड़ा हुआ है, तो ये जनाजे की बेअदबी है, जितने लोग मुयस्सर हों पढ़ा देना चाहिए। तो ऐसे ही निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो निकाह हुए हैं सहाबा इकराम ने कर लिए। बाज दफा इसका भी इंतजार नहीं किया कि नबी को बुलवाएंगे हम। मशहूर वाकया अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का, मदीना हिजरत करके आए तो निकाह की जरूरत थी, अजनबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मुख्तसर वाकया के अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके जाफरान की खुशबू लगी हुई है और रंग भी लगा हुआ है जाफरान। पूछा ये क्या है अब्दुल रहमान, फरमाया मेरा निकाह हो गया कल। देखो उन्होंने रायबंद के इज्तिमा का इंतजार नहीं किया, बल्कि ये भी नहीं किया कि भाई जुम्मा आ रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वा दूंगा। बस मिला, कहीं भी रिश्ता मिल गया, पैगाम भेजा, कबूल है, उन्होंने कहा अभी अभी बुलाओ, चलो जी हो गया निकाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी फरमाया अब्दुल रहमान मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसे निकलोगे, है भाई मेरा भी इंतजार ना किया। शरीयत इन चीजों को, हां उस वक्त जो अवेलेबल हो कोई बुजुर्ग उनको जरूर दावत दे। अफजल यह है कि निकाह किसी नेक आदमी से पढ़ाया जाए, नेक आदमी से पढ़ाया जाए, लेकिन नेक आदमी के इंतजार में निकाह में ताखिर ना की जाए। नेक आदमी से पढ़ाने का मतलब यह कि आपको फौरन ख्याल आए भाई हां हो गई है अब निकाह करते हैं, तो फौरन फौरी तौर पर जो नेक आदमी मुयस्सर हो आपको उस वक्त, जो मार्केट में अवेलेबल हो नेक आदमी उस वक्त, सही है ना, जो फौरी तौर पर हाँ भाई फलाने मौलवी साहब हैं, फला मुफ्ती साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, फोन करो टाइम है तो आ जाए तशरीफ ले आए हजरत, या हम आपके पास आ जाते हैं, ताखीर ना करें उसमें गैर जरूरी। किसी रीजन से किसी वजह से ताखीर है वो तो ठीक है, बाज दफा पूरा इत्मीनान ही नहीं है ना उन पर, तो थोड़ा सा डिले करता है कि इनके थोड़े हालात तो सामने आ जाए, देखें तो सही है क्या, ये ताखीर तो किसी वजह से है। महज इसलिए कि नेक आदमी से निकाह पढ़ाना है तो इसके लिए एक महीने का रायवन का इंतजार किया जाए, ये गलत है, इसकी मैं नफी कर रहा हूं। दूसरी बात यह कि इसलिए भी नामुनासिब है, जायज है रायवन में निकाह, बरकतें भी हासिल होंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये इसलिए भी कि निकाह का में जो गवाहों की जो शरीयत ने शर्त लगाई है इसका बुनियादी मकसद ये कि सबको पता चल जाए कि आज से फुलानी फुलां की बीवी है, ताकि लोग किसी को कोई शुभा ना हो कि पहले तो ये इनके साथ नहीं घूमते थे अब ये क्यों घूम रहे हैं। तो ये चीज अपने महल्ले में जहां लोग आप सब एक दूसरे को जानते हैं वहां ये हिकमत हासिल होती है, सब महल्ले वालों को जहां आप सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं सबको पता होता है, या आपके रिश्तेदारों को पता होता है कि फला और फला पहले एक दूसरे के लिए नामहरम थे, अब जब नाम पुकारा जाता है भाई फलानी का निकाह फला से किया तो सबको पता चल जाता है, अच्छा भाई ठीक है माशाल्लाह इनकी रिश्तेदारी आपस में कायम हो गई, अब अगर उनको कहीं लेके घूमेगा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये खुद सेटिंग में पड़ गए। आज तक हमेशा सेटिंग के खिलाफ बयान करते थे, आज खुद दूसरों की बहू बेटियों को लेके घूम रहे हैं, तो ये इल्जाम नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा। वरना कम अज कम रिश्तेदारों को तो पता हो ना, सब रिश्तेदारों को, आप कराची ही में हैं तो कराची ही में किसी भी मस्जिद में निकाह करें आपके रिश्तेदार पहुंच जाते हैं कम अज कम, लेकिन रायवन रिश्तेदार नहीं पहुंचते, इतने अच्छे होते तो मुल्क में इस्लामी इंकलाब नहीं आ जाता। जितने रिश्तेदारों में एक आध बेचारा जा रहा होता है रायवन के इज्तिमा में, वो भी लड़ मर के जा रहा होता है, उसको भी पीछे से सारे घर वाले टांगे खींच रहे होते हैं कि शर्म नहीं आती जाते हुए तुम्हें, भी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो या कर रहे हो, तो दीन का काम है उसमें कौन जाने देगा। तो पूरे महल्ले से या कम अज कम पूरे खानदान से एक या दो फर्द जा रहे हैं, तो इसलिए अफजल यह है कि निकाह अपने महल्ले में हो जहां लड़की वालों को भी लोग जानते हैं और लड़के को भी लोग जानते हैं, तो उनके सामने जब अलल ऐलान निकाह होगा सबको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं बात, मैं ये फतवा नहीं दे रहा कि वहां निकाह जो होते हैं वो होते ही नहीं है, गलत गलत बातें लोगों फिर मंसूब कर देते हैं, ना ये दे रहा हूं कि वो नाजायज है, मुस्तहब अफजल की बात कर रहा हूं, अफजलियत इसमें। अलबत्ता रायवंड के इज्तिमा में आप गए वहीं ख्याल आ गया, वहां आप ही जैसे कोई नेक बुजुर्ग आए हुए थे तो आपस में तय हो गया, चल भाई उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी आपको दे देता हूं, उन्होंने कहा आपने सोचा ऐसा ना हो अभी इनके नेक नेक इरादे इज्तिमा की बरकातें, घर जाते हुए इनका कहीं इरादा तब्दील ना हो जाए, वापस पहुंचे तो चलो हम यही निकाह कर लें फिर ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि निकाह में तीन चीजें बुनियादी, अहल ऐलान होता है, कम से कम ऐलान किया किया दो गवाह। अच्छा यहां एक और बात, बात से बात निकलती है कि निकाह में हमारे यहां मजमा इकट्ठा किया जाता है बारात के नाम पे, जबकि निकाह में ये मेरे इल्म में कहीं नहीं है कि मजमा बुलाओ, बल्कि जहां मजमा है वहां निकाह करो। जैसे जुमे की नमाज में मजमा होता है तो हुक्म है जुमे की नमाज के बाद निकाह अफजल है, सबको पता चल जाएगा, आप महल्ले की जुमे की जो महल्ले की मस्जिद है जुमे की नमाज पढ़े वहां नमाज के बाद निकाह, उस मजमा पहले से मौजूद है उसमें निकाह हो जाएगा। हमारे यहां निकाह नामों के जो कार्ड छपते हैं ये भी काबिले तर्क रसम है, इसको खत्म कर देना चाहिए। कार्ड सिर्फ वलीमे के होने चाहिए, वलीमे में है लोगों को जमा करो, निकाह में जमा करने का नहीं है बल्कि मजमे में। हदीस में आता है आलिनुन निकाहा, निकाह का ऐलान करो, तो ऐलान मजमे में होता है ना, जहां पहले से मजमा है वहां ऐलान कर दो फला की फला से शादी हो गई है, समझ रहे हो बात। अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो पूरी W11 बस बुक होके आ रही है तीन तीन चार चार, ये हिंदुओं का तरीका है, मुसलमानों का तरीका बोलो भाई, आप अमल करें ना करें मुंह से बोल दें कि ये किसका तरीका है, हिंदुओं का, बुतों की परस्तिश करने वालों का, उनका तरीका है। मुसलमान जो इस्लाम जो एक इंतहाई पाकीजा मजहब है उसमें इस फजूल और अहमकाना हरकत की का कोई तस्वुर नहीं, इसलिए जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असलाफ से चला आ रहा है उसी को इख्तियार करें। ये बारात वरात को बायकॉट करें, खत्म कर दें इस रस्म, गंदी रस्म है, बुरी रस्म है, बेतुकी रस्म है, सादगी सादगी सादगी। और याद रखो ये अल्लाह की हम पर बहुत बड़ी नेमत है कि हमें इस्लाम की सादगी दी है। एक साहब यूरोप से आए, उन्होंने कहा कि वहां यूरोप में जो फैमिली वाले लोग हैं ना जिनका फैमिली सिस्टम बरकरार है उनके यहां मरना बड़ा मुश्किल काम है, मैयत एक एक दो दो हफ्ते, जो ईसाई लोग हैं मजहबी लोग हैं दो दो हफ्ते मैयत पड़ी रहती है, उस पर हाय हुए रोना धोना चलता रहता है। और जो गरीब बेचारा वारिस है ना उसका अब्बा की मैयत पे उस गरीब का इतना खर्च हो जाता है कि वो मकरूज हो जाता है। तो ये पढ़ी लिखी कौमों में जिनका फैमिली सिस्टम है अभी बरकरार उनके ये हालात हैं। तो अल्लाह ने कितना अच्छा हमें हुक्म दे दिया, मैयत का इंतकाल हुआ सबसे पहला काम दफन कर दो उसको, समझ रहे हैं बात को, आराम से शादी कर रहे हो बच्ची की कोई खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह ना करे गैर मुस्लिम होते फिर हम सादगी को इख्तियार कैसे करते, लोग कहते किस बुनियाद पे कर रहे हो, खर्चा बचा रहे हो, कंजूस हो, बकील हो। अब हमारे पास दलील है, हम मुस्लिम हैं, हम कहेंगे भाई खर्चा बचाऊं नहीं बचाऊं अल्लाह उसके रसूल का यही हुक्म है, अब आप इसको कंजूसी समझो या सुन्नत की इतिबा समझो वो आपकी मर्जी है, हम तो ऐसे ही करेंगे भाई जैसे अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया। बच्ची की शादी पे खर्चा नहीं होता, दामाद ने करना है खर्चा, वलीमा जितना मर्जी कर ले हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अपनी जेब देख के जितना बड़ा वलीमा करना है कर ले, तो कितने आसानी से मामला निमड़ जाएगा कि नहीं निमड़ जाएगा। एक आखिरी बात करके आगे चलता हूं, देखो सब खानदान वाले मिलके बैठो आपस में, सब कंप्रोमाइज कर लो कि हमने बारात की रस्म अपने खानदान से खत्म, ताकि एक दूसरे को ताने फिर खत्म। वरना होता क्या है कि आपने नहीं की कहेंगे अपनी बच्ची की बारी में नहीं कर रहा, दूसरों की बारातें आज तक खाता रहा है सारी। हमारी मस्जिद के जो इमाम थे जहां मैं बचपन में उनके पीछे नमाज पढ़ा करता था 30 साल, उन्होंने मतलब 40 साल से इमाम है, वो मेरी पैदाइश से पहले के इमाम है। अब इमाम को तो लोग उनके ताल्लुकात भी बहुत हैं, लोगों को अकीदत भी है, तो हर शख्स की कोशिश होती है ना अपने वलीमे में इमाम साहब को दावत दे बारात में वलीमे में, तो इमाम जाहिर है इमाम बेचारे ज्यादा आमतौर पर इतने मालदार तो नहीं होते, तो 40 साल में पता नहीं कितने लोगों के बाहर उन्होंने वलीमे में शिरकत की है, लोगों ने उनको दावत दी। अब जब उनके बच्चे की शादी थी बेटे की, तो परेशान कि 40 साल में जितने लोगों का वलीमा खाया है किसी एक को भी अगर नहीं बुलाया तो वो क्या गएगा, कहेगा इमाम साहब हमने तो बुलाया था आपने नहीं बुलाया। तो बिल आखिर बेचारों ने किया वलीमा, और इतना बड़ा वलीमा शायद हमारे इलाके की तारीख में इतना बड़ा वलीमा ना हुआ, समझ रहे हैं बात। ऐसा लग रहा था रायवंड का एक इज्तिमा हो रहा है। बहरहाल उनके कुछ अकीदतमंदों ने भी थोड़ा सा उनकी कसम पुरसी और हालत देख के मुमकिन है शायद ताउन किया उनके साथ। तो कुछ मुरीदीन ने, कुछ मोतकदीन ने कहा भाई हजरत हम आपकी परेशानी को समझते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपस में मिल बैठ के खानदान के अफराद जिनमें समझदारी है वो आपस में तय कर लें कि भाई हम अपने बारे में हमने मशहूर करना है कि हमारे यहां बारात का तसव्वुर ही नहीं, हम लोग हैं ही इसी किस्म के, ना जहेज देते हैं ना जहेज लेते हैं, तय कर लें क्या जा रहा है। अगर रिश्तेदार इसके लिए तैयार ना हो, कुछ नौजवान आपस में मिलकर बैठ जाए, बोलो हमने एक नया खानदान आबाद करना है, समझ आ रही है बात। ये भी नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग शादी दफ्तर खोल लें, कुछ नौजवान मिलके, एक नौजवान नहीं 10-15 अफराद कमेटी बनाए और बोले इसमें इसके जरिए शादी होगी उसी लड़के की जो बारात के बगैर जहेज के बगैर शादी करेगा, समझ रहे हैं बात को। और एक के लिए तैयार नहीं होगा वो, ये भी बता दूं मैं, क्योंकि उसमें गरीब मिस्कीन किस्म की लड़कियां आएंगी जो जिनके पास जहेज के पैसे नहीं होंगे, ये तजर्बा हो चुका है, बड़े बड़े उलमा ने किया है, ऐसे दफातर खोले वो चले ही नहीं। मैंने हजरत मौलाना असलम शुगुरी साहब ने ऐसा इदारा खोला, मैंने कहा हजरत नहीं चलेगा, नामुमकिन है ये चल जाए जो आप खोल रहे हैं ना बगैर जहेज के शादी, इसमें सारी गरीब मिस्कीन लड़कियां आएंगी, लड़के क्वालिफाइड इन लड़कियों से शादी करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे फ्री में कर रहे हैं तो कोई चीज तो ऐसी मिले ना, क्वालिफाइड लड़की मिले हमें हमारे खानदान के हिसाब से, और जो क्वालिफाइड होगी वो बगैर जहेज के करेगी नहीं। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, उन्होंने एक साल कोशिश की वो नहीं चला। तो मर्द शादी के लिए अपने से कमतर लड़की से शादी के लिए उस वक्त तैयार होगा जब उसके पास एक और का ऑप्शन, क्या हो गया भाई यहां अटक गया आगे हलक में, ये मुशाहिदों तजर्बों की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात। अगर मेरी इन तजावीज पर आपको इश्काल है और आपको कबूल नहीं है, फिर जो हो रहा है होने दो, फिर रो नहीं, फिर ये नहीं कहा करो कि मेरी बहन बैठी हुई है उसकी शादी नहीं हो रही और मेरी अपनी नहीं हो रही और मुझसे जेना नहीं छूट रहा, मुझसे बदनजरी नहीं छूट रही, जाओ इसी गंदगी में गटर में कूदो नाचो गूं खाओ जो मर्जी करो, हमें परेशान नहीं करो। फिर समझ में आ रही है बात। मेरे पास लड़कों के फोन आते हैं जेना नहीं छूटता, मैं कहता हूं शादी करो, कैसे करूं बहनों की नहीं हो रही, पहले होगी तो फिर हम होगी हमारी। तो यही एक गंदगी है, जिसको गू खाने का शौक हो शौक से खाए, जिसको अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करने का शौक है तो भाई हम यहां अल्लाह रसूल की तालीमात बयान करने के लिए आपके सामने बैठे हुए, समझ में आ रही है बात। तो मर्द शादी करता है अपने से कमतर में लड़का जब उसके पास एक और का ऑप्शन होगा, तभी तो वो कमतर पे चलो अभी बेवा से कर लो, फिलहाल तलाक याफ्ता से कर लो, फिर देखेंगे एक और भी हो जाएगी बाद में। पहली करनी है तो मेरे भाई कुर्बानी का बकरा जो साल में एक दफा आता है वो किसी से लंगड़ा लूला बर्दाश्त होता है? जैसे ही लाएंगे महल्ले वाले बोलेंगे क्या उठा के ले आया यार। हालांकि बहुत से, चलो लंगड़े की तो मुमकिन है आप ये सोचें कुर्बानी पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत से बकरों की कुर्बानी हो जाती है, मगर महल्ले में लाएंगे तो इज्जत खराब हो। हमारे एक दोस्त बकरी उठा के ले आए कुर्बानी के लिए और इतनी उस बिचारी बारीक सी, लोग कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं भाई क्या सूप बना के पियोगे इसका, यानी ये तबसरे हो रहे हैं। तो कुर्बानी का बकरा जो साल में एक दफा लिया जाता है उस पर इंसान कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होता, अपना मैयार कम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बीवी है तो किसी की बांदी से कैसे शादी करेगा जो कुरान कह रहा है? कुरान कह रहा है ना जिना नहीं करो किसी की बांदी से शादी कर लो, तो कैसे करेगा शादी? तो यही जब भी मुमकिन है ये कि मर्द को वसअत दी जाए कि भाई फिलहाल अल्लाह भी कह रहे हैं फिलहाल गुजारा चलाओ, तो फिलहाल इससे, फिर अल्लाह ताला का वादा है कि एक दफा अल्लाह के रास्ते पे आओगे तो इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे तुम्हारे लिए, वसअतें पैदा होंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं चंद नौजवान मिलकर कोई ऐसा इदारा खोल लें, उसमें खवातीन जो परेशान हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही फॉर्म जमा करें, उनसे बोले कि आपको इस शर्त पे हम फॉर्म में इंदराज करेंगे कि अगर आपको दूसरी बीवी बनना पड़ा किसी की, या आपके शौहर ने आपसे शादी की तो वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, आप उसमें जबरदस्ती मुखालफत नहीं करेंगी, इस शर्त के साथ अगर आती हैं तो आप ये फॉर्म फ्री में फिल करें, कोई फीस नहीं है, जहेज भी नहीं आपसे लिया जाएगा। नहीं यारी बात समझ, जहेज भी आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री फोकट में शादी। माजरत थोड़े बाजारी अल्फाज हैं, लेकिन समझाने के लिए आप ही की जबान इस्तेमाल करूंगा ना, जो लियाकताबाद में राइज है जो जबान। फ्री में शादी हो रही है, कोई बारात नहीं, कोई खर्चा नहीं, बंदा ये बैठा हुआ है आपके दो दांत का, दिखा दे वहां बंदा बिठाया हुआ है, दो दांत का पला पलाया पूरी गारंटी के साथ। वो फौरन कहेगा भाई मैं ये नहीं, ये वाली नहीं, ये तो तलाक याफ्ता है, इसके साथ तो एक बच्चा भी मुझे मिल रहा है। तो आप उसको बोले भाई फॉर्म में और भी हैं, खबर करो भी और भी हैं, एक ले जाओ, थोड़ा कामयाब हुकूक अदा करो, एक साल चला के देखो, हम आपको भी देखेंगे, आप माशाल्लाह आप में वो गट्स हैं बीवी को संभालने के, नहीं है, अगर अच्छी तरह से आपने संभाल लिया, फॉर्म और भी हैं, और भी हैं। नहीं आ रही बात समझ में, और भी फॉर्म है हमारे पास, एक और भी करा देंगे, कोई मसला नहीं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, इससे जिना से भी, और इसमें बायकाट करो मुआशरे का, खानदान का, छोड़ दो ये खानदान के रस्म और रिवाज। सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने का सबब इंसान का खानदान बनता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुत परस्ती के खिलाफ दावत चलाई है तो लोग क्या कहते थे, हम बाप दादा के रास्तों को, तौर तरीकों को नहीं छोड़ते। इब्राहिम ने कहा जाओ जहन्नम में। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह आज ही अपने बाप दादा के तौर तरीकों को नहीं छोड़ रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमत तखल्तुम मिन दूनिल्लाही औसानम मवद्दता बैनकुम फिल हयातिद दुनिया, आपस की रिश्तेदारी टूट ना जाए, मोहब्बतें कायम रहे, इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए कि तुम खुदा की बगावत कर रहे हो। इब्राहिम ने कहा कि खुदा की कसम यही रिश्तेदारी इसी से बरात का क्यामत के दिन ऐलान करोगे, जब इसका अंजाम देखोगे, जब देखोगे ना उल्टे लटके हुए क्यामत के दिन, फिर यही बोलोगे अल्लाह ये मेरा बाप नहीं है, बाप बोलेगा ये मेरा बेटा नहीं है, यही रिश्तेदारी से बरात का ऐलान करोगे, मैं इसका कुछ नहीं लगता, इसको फेंक दो जहन्नम में, मुझे बचा लो। तो ये खानदान मुआशरा तुम्हें जिना की तरफ लेके जाएगा। इनके यहां जिना कोई जुर्म ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कहते हैं जिना कर लिया क्या हो गया। मैं आपको रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं अल्लाह का हुक्म पहले। रिश्तेदारी भी हम इसलिए जोड़ते हैं कि किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है मेरे भाई, रिश्ते भी इसलिए जोड़ रहे हैं हम। वालिदैन से बदकलामी बदतमीजी हराम है, जायज नहीं है, उससे बदकलामी बिल्कुल मत करो, लेकिन कुरान ने वालिदैन का हुक्म क्या बयान किया, साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, बहुत अच्छे तरीके से पेश आओ, लेकिन रास्ता किसका, वत्तबी सबील मन अनाब इलैही, रास्ता उसका जो मेरे दीन पे चल रहा है। वालिदैन के रास्ते पे नहीं चलना, अच्छा सलूक करना है वालिदैन के साथ, चाहे वो गैर मुस्लिम हो काफिर हो, जब भी मिलना है जिल्लत से बाजुओं को झुका के, जो खिदमत हो बताइए मैं करूंगा, लेकिन जहां अल्लाह रसूल की बात आएगी उसमें भी मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन करूंगा वो जो अल्लाह रसूल, इसमें आप मुझसे उससे आप इसमें ना लड़ें, जो करना है करना, यही हमें सिखाया भाई। अगर इसके अलावा कुछ और सिखाया तो आप बता दें, वालदेन के नमाज छोड़ दो, छोड़ देंगे आप, नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मेरे भाई ये करना पड़ेगा आपको अगर आप मुस्लिम हैं। और हैरत की बात इस पर होती है कि इस मामले में हर आदमी कहता है मुझमें हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं आज के नौजवान में इतनी हिम्मत है, इसको कहो ना फला बम रख के आ जाओ, फला जगह रख के आ जाएगा, इतनी हिम्मत है। ये जो दहशतगर्द हैं बम रखने वाले, ये सारे जवान लोग ही तो होते हैं, पैसों की लालच में क्या क्या कर लेते हैं, मगर इनसे बोलो शादी का, ये नहीं हो सकता भाई हमसे। तो इसलिए कुछ लोग मिल जाए, 10-15 नौजवान जरा तालीम याफ्ता हूं, ऐसे ना हो कि उनको देख के लोग भाग जाएंगे, ये नहीं, ये वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। तालीम याफ्ता हो, जिनको जरा लोगों से डीलिंग का तरीका आता हो, बातचीत का, इज्जत देना जानते हो, क्योंकि हर तरह के लोग आएंगे फिर उसमें, हर तरह की औरतें आएंगी, हर तरह के मर्द आएंगे, इज्जत देना जानते हो, बर्दाश्त की कुव्वत हो जरा, और ऐसे ही ना हो खुद ही फंसा फंसा के भागना शुरू कर दें, ऐसे भी ना हो, समझ आ रही है ना बात। ऐसे भी होते हैं कि वो ये वाली ये जो है ना ये साइड पे कर दो, ठीक है, इन आंटी से मैं बात कर लूंगा, इनका नंबर ले लो, इनसे मैं खुद ही बात कर लूंगा, इस तरह का भी ना हो, कुछ शरीफ आदमी हो, समझ आ रही है बात। तो अगर कुछ लोग मिल जाए, कुछ तालीम याफ्ता लोग इसमें मिल जाए और ये काम संभाल लें, तो थोड़ा सा तो कुछ तो तरक्की होगी ना मेरे भाई, शर्तें समझ में आ गई। उसमें ये शर्त हो भाई जो तालीम याफ्ता नौजवान है लड़के हैं वो नाम लिखवाएं, जहेज नहीं मिलेगा, दूसरी का ऑप्शन रहेगा आपके पास। लेकिन आपके आपके थोड़े मयार से, मयार से मुराद ये कि जो उर्फ में जो मयार है, उर्फ में है कि आपने पीएचडी किया हुआ है तो कम से कम एमए होनी चाहिए लड़की, ना 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 ना, हम आपको आठवीं वाली दिलाएंगे, आठवीं पास। समझ आ रही हो? करो भाई, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। आपको बिल्कुल आपके हिसाब से मिल गई तो भी कौन सा कब्र में आपके साथ जाएगी, मर जाओगे, खत्म हो जाएगी। ये मुसाफिर ट्रेन में आप सफर करते हैं ना, कोशिश होती है सीट पे कोई अच्छा आदमी मिल जाए, नहीं मिला तो गुजारा करता है यार, चलो भाई आगे उतर जाना है, ये थोड़ी कि हमेशा इसी के साथ जिंदगी गुजरेगी। बीवी भी इस मुसाफिर खाने में शरीक हयात है, ये हयात ही सफर है, तो सफर के हिसाब से देखो। ना काबिले बर्दाश्त भी ना हो कि भाई सफर ही मुश्किल हो जाए, ट्रेन की खिड़की से छलांग मारने का दिल करे। बाद दफा ऐसा भी होता है, ऐसा मुसाफिर पैसेंजर आपके साथ सफर कर रहा है, आप कहते हो भाई छलांग लगा के गिर जाऊं या इसको गिरा दूं, तो ऐसा भी ना हो कि आपके लिए नाकाबले बर्दाश्त हो। मा काबल अकुम का मतलब यही कि जो जरा मुनासिब लगे तुम्हें, तो थोड़ी सी मुनासिबत, बहुत मयार ऊंचा ना हो। ये करोगे फिर आपस में थोड़ा सा, तो इसकी ये देखो कितना मशहूर होता है, ये मैं आपको बताऊं कितनी ज्यादा इसकी तरक्की होती है, और आपकी अपनी भी हो जाएगी इस चक्कर में, बाहर जो ये इदारा चलाएगा उसकी भी तो हो ही जाएगी ना। नीयत खिदमत की रखे वो लोगों की, क्या ख्याल है, गलत तो नहीं कह रहा भाई, कुछ 10-15 लोग, मैं मुझसे मेरा काम क्या होगा, मैं बयानात में उसकी पब्लिसिटी कर दूंगा तो भाई ऐसा एक इदारा है, उसमें बगैर जिम्मेदारी के, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं एक एक को जाकर लेबोरेटरी टेस्ट कराऊं ये आदमी सही है या दो नंबर है, ये टाइम नहीं है हमारे पास, तो वो। लेकिन ऐसा इदारा फिर लोग खुद ही देखेंगे कि ये सही लोग हैं या गलत लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वो तो रिजल्ट जब आएगा तो उससे पता चल जाएगा ना। तो लड़कियां बहुत हैं, बहुत हैं, बे इंतहा भरमार है, लेकिन दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ है कि हमने, उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है ना दिमाग में, एक खन्नास जब देखता है ना इंसान, उसने कर ली, यूं कर ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक दूसरे को देख कर रिवाज पकड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की तलाक के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खौफ था कि अगर मैंने कर ली तो अरब क्या कहेंगे, अपनी मुंह बोली बहू को बीवी बना लिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको अब करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप करेंगे तो लोगों के दिल से इसकी नफरत, इस अमल की नफरत निकलेगी। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि ऐ नबी आप बयान दें, खुतबा दें जिसमें बताएं कि जो मुंह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता और उसकी बीवी हकीकी बहू नहीं होती, लिहाजा ये जायज है, ये भी तो कर सकते थे ना। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं, अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह इनसे करा दिया है ताकि आपके अमल को देख के लोगों का जुमूद टूटे। तो मेरे भाई अमल को देख के जुमूद टूटता है, तकरीरों से जुमूद नहीं टूटता, अमल करेंगे। रमजान का रोजा रखना क्यों आसान, एक माहौल बना हुआ होता है, नमाज का माहौल नहीं है तो नमाज पे रोजे से ज्यादा तकरीरें होती हैं मगर नमाज पढ़ने वाले कम है दुनिया में, तो उसका चूंकि माहौल बना हुआ है रोजों का सब रख लेते हैं। नमाज का माहौल नहीं है, बेनमाजी ज्यादा है तो उसके सुबह शाम फजाइल बयान करें मगर अमल नहीं होता, हालांकि उसकी फजीलत और उसकी अहमियत रोजे से ज्यादा है नमाज की अहमियत, तो कुछ लोग कर लें तो सवाब मिलेगा, सवाब की हालात की कोई गारंटी नहीं है। ये जो आप ये काम करेंगे तो किसके लिए, अल्लाह के लिए, इसमें जो मुश्किल आते हैं अल्लाह के लिए। ऐसा ना मेरे घर पे आए आपने पाता, आपने बोला था हमने वो कर दिया, अब ये हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। इसमें फायदा हो नुकसान हो, नुकसान है तो उस नुकसान की तलाफी करके फिर इसको तसलसल को जारी रखना है, रोक नहीं सकना। कुछ लोग अगर इस काम के लिए आमादा हो जाए तो मुझसे जितनी खिदमत हो सकेगी उनकी मैं करूंगा, मुझसे मशवरा लेना हो, मुझसे मुलाकात करनी हो, जितना टाइम चाहिए मैं उनको मुलाकात उनको मशवरे देने के लिए तैयार हूं। अपने लिए मैं ये काम नहीं कर रहा, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, ठीक है ना, मेरी बहुत सारी हुई हुई है, अपने लिए नहीं। अगर मैं कमा रहा होता ना फिर ये दावत चला रहा होता, कोई ये कह सकता था कि अपने चक्कर में मौलवी साहब पढ़ गए, तो मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हुई हुई है। दुआ करो अल्लाह इनको सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए, मुझे चलाने की, उनको चलने की। बाकी ये कि ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, तो कोई लोग अगर इसमें नौजवान कुछ तालीम याफ्ता जरा पढ़े लिखे लोग हों तो उनको अगर ये करना है तो फिर मुझसे मिलने मैं थोड़ा वक्त दूंगा, اور یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا دیں. یہ آیت میں آگے لے کے چلتا ہوں. مدارس سے جو لڑکیاں فارغ ہوتی ہیں نا, عالمات, بعض بڑی ذہین سمجھدار ہوتی ہیں, ان کو عالم کا رشتہ ہی نہیں ملتا, وہ پوچھے لگا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک عالمہ کی شادی ہوئی, لڑکے نے پہلے تو بڑے لارے رپے دیے کہ میں خود بھی عالم بنوں گا, میں یوں کروں گا, میں یوں. شادی جب ہو گئی تو اب وہ اس کو بنات کے مدرسے میں پڑھنے بھی نہیں, پڑھانے بھی نہیں دے رہا, حالانکہ وہ پہلے سے استانی تھی. اب دیکھو بات تو یہ ہے کہ جب ایک لڑکی نے علم دین حاصل کیا اور مضبوط علم ہے, تو اب وہ کیا کر رہی ہے, سارا دن گھر کے کام کاج کر رہی ہے, اور اس کے ساس اور اس کے شوہر اور اس کے رشتہ دار اس کو مدرسے میں پڑھانے نہیں دے رہے. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لڑکی کی پہلے ذمہ داری گھر ہے. ٹھیک ہے, دلیل سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہی لڑکی اگر ڈاکٹر ہوتی تو پوچھے لگواتے اس سے, کہتے جائیے آپ پڑھائیں, آپ ٹیچنگ کریں یونیورسٹی میں. یہی لڑکی انجینئر ہوتی, جاب کرواتے اس سے. چونکہ علم دین ہے نا, اس کے مقابلے میں پوچھے کی اہمیت زیادہ ہے. علم علم ارشاد کرے گی, لڑکیوں کو پڑھائے گی, وہ بھی دین سیکھیں گی ایمان سے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بہتر نہیں گھر میں پوچھا لگ جائے. تو میری سمجھ میں یہ چیزیں آتی نہیں. لڑکی کی ذمہ داری یقیناً پہلے گھر ہے, باقی چیزیں بعد میں, لیکن لوگ جو اس سے گھر کے کام لے رہے ہیں ان کی نیت میں فساد ہے, ان کی نیت. یہی لڑکی ڈاکٹر ہوتی, ٹیچر ہوتی, بلکہ شرطیں لگاتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کس سے, اسکول ٹیچر سے, تاکہ اس کی بھی آمدن گھر میں آئے. کیونکہ عالمہ جو پڑھا رہی ہے بےچاری کو 2500-3000 تو وظیفہ ملے گا, وہ کوئی بڑی آمدن نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ بہت سے عالمات ہیں, ان کی بھی شادیاں کرا دیں کسی پڑھے لکھے سے, ٹھیک ہے, تاکہ جب 2-3 ہوں گی تو وہ شخص بھی یہ سوچے گا چلو گھر میں کام کاج کے لیے دوسری والی رکھ لو. اس کو جیسے مدرسے میں اپنی تعلیم ہے, تعلم ہے, اس سے دین کی تبلیغ کا کام لے لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کا ظرف وسیع ہوتا ہے. بھائی یہ عالمہ ہے, میری بیوی ہے, میں جاہل ہوں, میں بالکل کیا بولوں میں ابھی, ٹھیک ہے نا, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. اس کو اللہ نے علم دین دیا ہے, تو اس نے جو اتنا مضبوط علم حاصل کیا ہے, اس کا یہ علم ضائع نہ ہو. تو چلو اس کو میں گھر کے کاموں سے تھوڑا سا مستثنا کر دیتا ہوں. یہ کیا کرے گی؟ پڑھائے گی, تعلیم و تعلم کا سلسلہ, بچوں کو تجوید پڑھانا, یہ بھی تو کام ہے نا بہرحال. تو یہ کام کر لے گی. یہ والی اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو بھائی گھر کی ذمہ داری تم سنبھالو, صحیح ہے نا. تو یہ حساب بھی چل سکتا ہے, لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا سا ہمت کریں, ادارہ کھولیں, ایسے چلائیں, کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خطرناک باتیں ہو گئی یہاں کچھ زیادہ. اچھا خیر, یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں. البتہ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے. تو اللہ نے 3 شرطیں بیان کی کہ نہ گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت ہے, چاہے وہ تا حیات ہی کیوں نہ ہو. آپ کہنا میں اتنا وفادار ہوں, یہ میری گرل فرینڈ, میں اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا. اللہ کے یہاں یہ بھی غلط ہے, بیوی ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اور خواہش بھی پوری کر کے چھوڑ دینے کا وہ نہ ہو. البتہ کوئی شخص نکاح کر رہا ہے, لیکن نکاح سے اس کا مقصد خواہش پوری کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں صرف مزے کے لیے, یعنی یہ عنوان ہوتا ہے کہ یہ شادی کر رہا ہے صرف کس کے لیے, مزے کے لیے. تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. جب کوئی آدمی صرف مزے کے لیے شادی کر رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں, یا تو وہ اس کا مقصد ہے صرف مزے برائے مزے, حقوق ادا کرنے کا پروگرام نہیں ہے, اس کے لیے تو شادی حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ایک آدمی کا ارادہ ہے تو مزے برائے مزے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مزے کے لیے شادی کر رہا ہوں مگر میں بیوی کے حقوق پورے ادا کروں گا, تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ایسے آدمی کو ملامت کرنا کہ یار اس کا تو مقصد مزے اڑانا ہے, تو یہ حلال ہے, مزہ ہے نا, حلال مزے اڑا رہا ہے اور وہ حقوق بھی پورے کرنے کی نیت, تو پھر اس کو ملامت کرنا اس کو جائز نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو ملامت کرنے میں کفر کا اندیشہ ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ملوم ملامت کو کہتے ہیں, کہ جو خواہش پوری کریں بیوی باندھی سے تو یہ لوگ قابل ملامت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کسی کا مقصد نکاح سے صرف مزے ہی اڑانا ہے, لیکن اس کا یہ عزم ہے کہ میں مزے برائے مزے نہیں بلکہ میں اس کے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی کیا کروں گا, پورے پورے ادا کروں گا, تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ قابل ملامت؟ بولو بھائی, نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کسی سے صرف اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب لوگ فوراً ملامت کریں گے، یہ آج کل کے نیک لوگ بھی ایسے ہو گئے، شکل دیکھ کے شادی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر وہ شکل دیکھ کے خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کر رہے ہیں لیکن اس کا ارادہ ہے حقوق پورے کرنے کا، تو جائز ہے شریعت، اس کو غلط کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ہوتا یہ کہ شہوت پرست آدمی وہ مزے پورے کرنے کے بعد پھر بوجھ سمجھنے لگتا ہے بیوی کو، اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ ذمہ دار آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حقوق پہلے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں اور مزے دوسرے درجے. شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے، ایسے واقعات بھی ہمارے علم ہیں، حسن سے متاثر ہوئے عشق، باتیں ایسی، منگیتر کو باتیں کر رہے ہیں کہ میں چاند سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، شادی کے بعد برگر نہیں لایا جا رہا، اس سے دعوے یہ کیے تھے کہ میں کیا لے کر آؤں گا، تم شادی تو کرو، میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں گا، آسمان سے چاند سے ستارے کہہ رہے تھے، سوری آسمان سے ستارے اور چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا میں، اب انڈا موڑ سے برگر نہیں لے کے آ رہا. تو یہ انسان کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کا چونکہ دل بھر گیا نا، دل بھر گیا، اب کیوں وہ محبت کا اظہار کرے گا اور اب کیوں ایسی باتیں کرے گا. تو یہ اگر ہے نا تصور تو یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ شہوت پرست آدمی ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. حضرت خدیجہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی، آپ نے سب سے زیادہ محبت ان سے کی ہے، سب سے زیادہ. تو یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے. پھر امی عائشہ سے کیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیسی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی جس گلاس سے جس جگہ سے پانی پیتے تھے نا، آج کوئی ہے اپنی بیوی کو اتنی محبت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت عائشہ جس جگہ سے پانی پی رہی ہیں گلاس میں منہ لگا، ہم تو ایسا کرتے ہیں نا کسی نے پانی پیا ہو تو ہم ذرا سائڈ بدل کے وہاں سے پیتے ہیں، اس کے اونٹ یہاں لگے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا لگ گیا ہو، گٹکا بھی لگ گیا ہوگا اس میں اور مین پوری بھی لگ گئی ہوگی، تو ہم گلاس گھماتے ہیں، کتنا ہی نمازی صاف ستھرا ہو پھر بھی وہاں سے گھن آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی ہیں، آپ برتن لے کے وہی منہ لگا کے پانی پیتے تھے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیسا نبھایا ہے. اور موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت نکلی ہے جب آپ کا سر امی عائشہ کی گود میں تھا. یہ اس لیے عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سردار تھے، عرب آپ کے تابع ہو چکے تھے، ایک ایک اشارے پہ گردن کٹاتے. جس آدمی کو اتنی عزت مل جائے وہ تو ماں کو نہیں پوچھتا بیوی کو کیا پوچھے گا، وہ تو اس کے تو سر ہی اونچا ہو جاتا ہے. پھر موت کے وقت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فضیلت ہے کہ میرے تھوک کو اللہ نے نبی کے تھوک کے ساتھ جمع کیا. آپ سے بیماری کی وجہ سے مسواک چبانا ممکن نہیں تھا، آپ نے امی عائشہ کو دیا کہ یہ چبا کے دے دو، ورنہ بیوی کا تھوک بھی جب بیوی کوئی چبا کے دے دے تو آدمی کو تھوڑی گھن آتی ہے اس سے، مگر جب محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت کیسا محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ نہیں فرما پتھر سے کوٹ کے دے دو، فرما عائشہ دانتوں سے چبا کے دے دو. تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزیں لیا کریں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، حقوق والی چیز بھی لے اور وہ جو نکاح والی چیز بھی، تو دونوں چیزیں لیتے ہیں تو پھر حساب کتاب چلتا ہے. بہت سے بدبخت ہیں میرے علم میں جنہوں نے نکاح کیا مگر نکاح کرتے ہوئے تو شریعت میں جلدی شادی ہے بس کر لو، اسلام میں اتنی تاخیر نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا، فوراً کر لی. اب جب کر لی ہے تو پھر اسلام نے جو کہا ہے کہ بیوی سے ایسی محبت کا معاملہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں ہو رہا. ویل للمطففین ہے نا، کہ جب لینے کا وقت آتا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں، دینے کا وقت آتا ہے ڈنڈی، جب لینے کا وقت آتا ہے تو وعیدے سناتے ہیں. دیکھو کسی کا مال ناحق کھانا جہنم میں جانے کا سبب سنا دی، اب جب دینے کا وقت آیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگ بولیاں لگا کے کمیٹی لیتے ہیں نا، کم میں خریدتے ہیں کمیٹی، یہ سود ہے، لیکن جب اپنی نکل گئی کمیٹی اب فتوا لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سود ہے، صحیح ہے نا، اب کیا کر رہے ہیں، یہ سود ہے. تو بھائی آپ نے تو لے لیا، اب سود کا مطلب جو اضافی آپ لوگوں نے پیسے لیے مجھے دے دو، तो मैं जवाब ये देता हूं कि ये सूद है, लेकिन आपने जो लोगों से कर्ज ले लिया ना, तो कमेटी का इंतजार लोगों पर वाजिब नहीं, आपसे फौरन अभी भी वापस मुतालबा कर सकते हैं, जो आपने एडवांस कमेटी लिए फौरन वापस दे दो। सूद तो है, ये मुआहदा बातिल है, लेकिन सिरे से बातिल है, लिहाजा दो आदमी इन पे छोड़ो, इनसे बोलो जितने तुमने कमेटी के पैसे लिए हैं ना, बोली लगा के सारे वापस करो, अभी करो वापस, घर नहीं जाने देंगे। ये भी है, तो ये हिसाब है कि दोनों चीजों को लेना चाहिए। तो ये बस आयत का तर्जुमा करके दर्स को खत्म करता हूं। सवालात की पर्चियां हैं क्या? फरमाया फैदा उहसिन फईन अतैना बिफाहिशतिन, जब ये निकाह की कैद में आ जाएं, फईन अतैना बिफाहिशतिन, तो बांदी अगर किसी बेहयाई का इर्तिकाब करे यानी जिना करे, फअलैहिन निस्फु मा अल मुहसनात मिन अज़ाब, तो आजाद औरतों पे जो सजा है बांदी को निस्फ मिलेगी। आजाद औरत की सजा 100 कोड़े है, बांदी की सजा 50 कोड़े। गुलाम को शरीयत में कम सजा मिलती है क्योंकि गुलाम है, आजाद आदमी को ज्यादा सजा मिलती है। गुलाम आजाद आदमी की जिना की सजा 100 कोड़े है और गुलाम की जिना की सजा 50 कोड़े है। आजाद आदमी की औरत की जिना की सजा 100 कोड़े और बांदी की जिना की सजा 50 कोड़े। आजाद आदमी और औरत अगर शादीशुदा हो, जिना करे तो उसे संसार किया जाता है, पत्थरों से मारा जाता है। बांदी शादीशुदा होके भी अगर जिना करती है तो उसे पत्थरों से हलाक नहीं किया जाता, बल्कि कोड़े लगाए जाते हैं उसको, 50 कोड़े लगा के छोड़ दिया जाएगा। आगे फरमाया दाली कलीमन खशियत आनता मिनकुम, ये बांदी से निकाह उसके लिए है जिसको जिना का खतरा हो। वह अंतस्बिरु खैरुल्लकुम, क्योंकि इस निकाह में नुकसानात हैं, किसी की बांदी है, बच्चा गुलाम पैदा होगा, इसलिए सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है कि इंतजार करो, अगर अपने नफ्स पे काबू पा सकते हो आजाद औरत से निकाह किया करो। फरमाया वह अंतस्बिरु खैरुल्लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला इन आयात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत सिर्फ तर्जमा कर देता हूं, फरमाया कि युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारे लिए अपने हकाम खोल खोल के बयान कर दें। ये इतनी मजेदार आयत है ना, इन तमाम अहकाम के बाद जो बयान हो रही है, अल्लाह अपनी नेमत बयान कर रहे हैं। देखो अल्लाह तो चाहता है तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दे, ये बताते गलत क्या है और सही क्या है। आगे फरमाया वयुरीदुल्लदीन यत्तबिउन अश्शहवात, लेकिन जो लोग शहवत परस्त हैं, गैर मुस्लिम लोग जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, वो ये चाहते हैं कि अंतमीलु मैलन अजीमा, के तुम सीधे रास्ते से बिल्कुल हट जाओ। तो उनकी इत्तिबा ना करो जो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह के पीछे चलो जो तुम्हें सही सही मालूमात बता रहा है, जो तुम्हें सही सही अहकाम दे रहा है। कितना बड़ा फजल है मेरे भाई, हमारे पास अल्लाह की किताब असल शक्ल में मौजूद है, इसमें हमें पता चल जाता है ये सही है ये गलत। उनके पास कयामत तक सोचते रहते हैं उनके फिलोसफर के सही क्या है गलत क्या है, जिसकी कुरान ने मिसाल दी कि औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यगशाहु मौजुम मिन फौकिही मौज मिन फौकिही सहाब ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फौक बाज़ इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा। फरमाए गैर मुस्लिम की मिसाल ऐसे है जैसे समंदर की तह में हो कई अंधेरों में, एक आदमी समंदर की तह में हो वैसे ही अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर की लहरों का अंधेरा, आसमान पे काले बादलों का अंधेरा, इतना धक अंधेरा, काला अंधेरा कि इदा अखरजा यदहु लम यकद यराहा, हाथ निकाल के देखना चाहे तो हाथ भी नहीं देख सकता। हाथ तो दूर करीब करके देख लेता है ना इंसान, का हाथ नजर नहीं आता। तो ऐसे आदमी को क्या पता मैंने अगला कदम कहां रखना है। ये अल्लाह उनकी मिसाल दे रहे हैं गैर मुस्लिमों की, वो यही सोचते रहते हैं कि नेचर क्या है, गैर फितरी चीज क्या है, सही क्या है गलत क्या है, उनको रहनुमाई नहीं है, तभी तो परेशान है। कोई कहता है गर्लफ्रेंड रख लो, कोई कहता है नहीं निकाह करना चाहिए, कोई कहता है औलाद होनी चाहिए, कोई कह रहे नहीं औलाद नहीं होनी चाहिए, कोई क्या। जितने फिलोसफर हैं उतने ही नजरियात। फिर एक ही कौम के अंदर इतने, फिर उन कौमों में इख्तलाफात। रूस भी तरक्की याफ्ता कौम, उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म होना चाहिए, शख्सी मिल्कियत होनी नहीं चाहिए, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इस नजरियात में, बड़े बड़े जहीन लोग। अमेरिका कहते नहीं सेकुलरिज्म होना चाहिए। फिर ये इनकी कयामत आ जाएगी मगर किसी एक पॉइंट पे, ये बुनियादी जो पॉइंट है ना उस पर नहीं। इबादत का क्या तसव्वुर है यही फैसला, यही फैसला नहीं कर सकते मजहब की जरूरत है या नहीं है। फिर मजहब अगर है तो इबादत का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बुतों की करें या नहीं करें, करें तो कैसे करें, तवहुमात कौन चीजों में नहुसत होती है या नहीं होती, अगर होती है तो कौन सा अदद मनहूस है, कौन सा महीना मनहूस है। कयामत आ जाएगी, ये फैसले इनसे नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ہم تمہیں حق اور باطل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی. یہ قرآن کی صفت ہے کہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. فرقان کا مطلب کیا ہے, ہر ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ کیا کر دے گی, کلیئر, بالکل صاف پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے یہ صحیح. تو بھائی جب اتنا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے نا, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط کو انسان غلط سمجھے, پھر اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی غلطی ہو جائے تو غفور ہے رحیم ہے, غلطی نہیں سمجھتا اور بس میڈیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے پھر ذرا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. غلط کو غلط سمجھتا ہے تو چھوڑنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے اس کو. آج کے دور کے حساب سے تبلیغ کی ضرورت ہے یا جہاد کی؟ مولانا ابرار الحق کلیانوی صاحب ہیں, حضرت مولانا شریف تھانوی ابرار الحق کلیانوی کہہ رہا ہوں, مولانا ابرار الحق یہ جو ہندوستان کے تھے ہردوئی رحمہ اللہ تعالی انتقال ہو گیا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے آخری خلیفہ تھے, ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تبلیغ زیادہ ضروری ہے یا جہاد؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ایسے جیسے کوئی پوچھے گردے زیادہ ضروری ہیں یا پھیپھڑے, دونوں ہی چیز ضروری ہیں میرے بھائی. کسی ایک چیز کو بھی جسم سے نکالو گے تو جسم کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. ہاں یہ کہیں کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے, تو ضروری سارے کام ہیں وہ سب کرنے ہیں, سب فرض کفایہ کی حد تک ضروری ہیں. باقی یہ کہ کسی کام میں مشقت بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں ثواب زیادہ ہے. جہاد میں مشقت بہت زیادہ ہے, جہاد میں ایک رات حدیث میں آتا ہے جس نے پہرے میں گزاری, صف اول میں پہرہ دیتے ہوئے, اس کی ایک رات لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے. یہ وہ رات ہے جس میں حدیث میں آتا ہے اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا, تو اس میں مشقت بے پناہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاد شرعی جہاد ہو, علماء کی رہنمائی میں ہو. ہر جگہ بم پھاڑنا, ہر جگہ پھٹنا, اس کو جہاد نہیں کہتے, اس سے فساد زیادہ ہوتا ہے. پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی اب نہیں کی جا سکتی, اسلام اس سے کیا؟ اسلام کہتے ہیں نابالغ بچی جو پیدا ہوئی ہے اس کی بھی شادی کر سکتے ہیں آپ, پیدائش سے پہلے نہیں ہو سکتی. کہ آپ لوگ زیادہ جوش میں آ جائیں اور کہیں میری مستقبل میں جتنی بچیاں ہیں میں نے آپ کے مستقبل میں ہونے والے بچوں سے ان کی شادی کر, یہ کچھ زیادہ ہو جائے گی. پیدا ہونے دیں, البتہ اس میں بچی کا مفاد دیکھنا چاہیے. بعض دفعہ اس میں نقصان ہوتا ہے, آپ نے نکاح کر دیا پھر وہ بندہ ہی صحیح نہیں نکلا. تو اس لیے اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ کم از کم بلوغت کا انتظار کریں. البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے بلوغت کا انتظار کیا تو یہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا, ایسا اچھا آدمی ملے گا نہیں. پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ شادی کر دی جائے اس کی اپنی ذمہ داری پہ. پہلے بتا دوں آپ, اگر کسی لڑکی کا رشتہ پہلے سے کہیں اور جگہ ہو لیکن وہ لڑکی وہاں رشتے پر راضی نہ ہو اور گھر والوں کے بغیر اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر لے, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ لڑکی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرنا انتہائی معیوب حرکت ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت ہے, اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باپ یا بھائی کم از کم ان دونوں میں سے کوئی ساتھ ہو اس کے, کیونکہ اس میں لڑکیوں کا بہت نقصان ہے. اللہ کے نبی نے تو اس سے منع کیا ہے سختی کے ساتھ. ایسے کئی کیس آئے ہیں, لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تو بن جاتی ہیں شادی کر لیتی ہیں پھر زندگی بھر کے عذاب میں. تو اور اس میں لڑکی کے باپ اور بھائی کی بے عزتی بہت ہے, شریعت نے لڑکی کے نکاح میں ان کی عزت کا بھی خیال کیا ہے, باپ کے شادی کرے گی ان کی عزت خراب ہو جائے گی. تو اپنے رشتے داروں کی عزت داؤ پہ لگانا کہاں سے جائز ہو گیا, انہوں نے پالا ہے, انہوں نے بڑا کیا, جوان کیا. بھائیوں میں باپ میں کتنی غیرت ہوتی ہے اپنی بہن بیٹی سے متعلق, ان کی غیرت کی لاج رکھنی چاہیے اس کو. اگر پسند بھی آ رہا ہے تو ان کو اپنے والدین کو راضی کرے, والد اور بھائی کو خاص طور پر ان کو راضی کرے. اس کی تو کوشش ان پہ دباؤ کسی ذریعے سے ڈلوائے یہ تو ٹھیک ہے, مگر ان کی مرضی کے بغیر کر لینا اس کی حوصلہ افزائی شریعت کبھی بھی نہیں کرتی. رہا یہ مسئلہ کہ کرے گی نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, دو الگ الگ مسئلے ہیں. یہ کرنا اچھا کام ہے, کرنا تو بہرحال برا کام ہے, لیکن کرے گی تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. نکاح ہونے میں یہ کہ وہ لڑکا اگر اس کا کفو ہے, ہم پلہ اس کے پیرلل ہے, برابر کا ہے, جوڑ کا ہے یا اس سے افضل ہے تو نکاح ہو جائے گا, اور اگر اس سے کمتر ہے نسب کے اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے اس سے کم ہے تو پھر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, چاہے کورٹ میں نکاح کرائے چاہے کہیں بھی نکاح کرائے. तो इसलिए ये तो इसमें एहतियात जरूरी है। अच्छा भाई, बाकी ये कि वालदैन को भी चाहिए कि शरीयत में जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी रजा भी जरूरी है, उसके बिल्कुल जज्बात का ख्याल ना करना और गन पॉइंट पे उसको बस किसी को पकड़ा देना ये भी गलत है। लड़का या लड़की कितने साल की हो तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, कुछ कहते हैं जब रिश्ता आ जाए। अच्छा, लड़की का रिश्ता जब मुनासिब मिल जाए कर दें, नहीं मिले तो सारी जिंदगी बिठा के रखें, क्योंकि इसी उल्टे सीधे के हवाले कर देने से घर में बिठाना नहीं आ रही बात। आ रहा चर्सियों का रिश्ते हैं, हीरोइनशियों के आ रहे हैं। आपने मौली साहब से सुना कि लड़की की शादी में ताखीर ना करो, फौरन करा दी, तो मौली साहब से ये भी तो सुन लेते कि लड़की की शादी उसके कुफूह में किया करें, हम पल्ला कम अज कम उसके जोड़ का रिश्ता हो। तो रिश्ता नहीं मिल रहा इस वजह से ताखीर तो ठीक है, अगर रिश्ता मिल जाए तो बुलूगत के फौरन बाद निकाह करें उसका। मेरी अपनी भांजी का निकाह भी 13.5 या 13 साल की उम्र में हुआ है, हमने खुद कराया अपने भांजे से, वो आकिल बालिग दो दांत का, हमें आ रही है तालीम याफ्ता था, वालिद साहब भी उसके माशाल्लाह, जो मेरे जो भांजा है मेरे जो यानी बहनों ही है वो भी खा, यानी आमदन उनकी भी मुनासिब है। तो भांजी बालिग हुई तो हमने कहा भाई कर दो, दोनों को टिका दो, दोनों रिश्तेदार है ना, ये भी मेरी भांजी है वो मेरा भांजा है, समझ आ रही है बात, कराओ भाई इसी तरह होगा। इसके वालिद भी माशाल्लाह समझदार हैं, दूसरे बहनोई भी वो तो आलिम है। मैं कह रहा हूं खानदान वाले आपस में मिल मिला के तो बड़े आराम से कर सकते हैं ना भी। हमने कहा भाई ना हम जायज देंगे ना तुम ताना दोगे, सभी कर रहे हैं ना, हम आपस में खुद ही ये कर रहे हैं। बारात गई, समझ रहे हैं? तेल लेने बारात गई, बारात को हमने W11 बिठाया, आप तेल लेकर आए, जाए तेल का कारोबार करें आप, जाए यहां से बारात बारात नहीं होगी। अब मसला यह था कि जो लड़की है ना, जो भांजी थी हमारी, उसके जो ससुराल है वो पूरा टब्बर, अल्लाह करे वो कहीं बयान ना सुन ले, वो ना वैसे खून खुआर ना, ये कौन सी शादी हो रही है, मौलवियों की कोई शादी है ये, हमारे खानदान में आज तक ऐसी नहीं हुई, ना जहेज ना कोई कार्ड ना कोई बारात। लड़का भी जो भांजा है वो भी माशाल्लाह मर्चेंट नेवी में अभी थर्ड अफसर तो मेरा ख्याल है बन चुका होगा, अभी गया है मर्चेंट नेवी में, उसकी वो मुकम्मल हुई। मेरा सगा भांजा है, मेरे बयानात में बैठता है, शुरू में बैठता था माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है, दाढ़ी वाड़ी भी है, नेक भी है, तो पहले नेक बना फिर मर्चेंट नेवी में उसको भेजा, तो तनख्वाह आना शुरू हुई उसकी। हमने कहा भाई टिकाओ भाई, जिस जिसकी तनख्वाह आना शुरू हो टिकाते चले जाओ, उसको निमटाते चले जाओ होलसेल के हिसाब से, ठीक है। अव्वल तो उसके वालिद खाते पीते हैं तो बच्चे की तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है अभी आने की, बच्चा समझदार है, नेक है, परहेजगार है, अब्बा को चाहिए वैसे ही करते हैं भाई, एक बहू ले आ, जहां दो रोटियां दूसरे बच्चे खा रहे हैं दो रोटी एक बहू भी खा लेगी, लेकिन अब्बा ऐसा कंजूस होता है ना, अल्लाह माफ फरमाए, वो कहेगा नहीं मैं दो रोटी किसी को क्यों खिलाऊं, मेरे घर में आके दो रोटी ज्यादा खा लेगी, मैं नहीं खिलाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो मैंने पिछले हफ्ते तफसील से बताया था ना कि लड़का अगर आपका जिम्मेदार है, समझदार है, मर्चेंट नेवी में कोर्स कर रहा है, पढ़ रहा है, आपको पता है कल कमाने लगेगा ये, तो शादी 2 साल पहले भी अगर कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, 2 साल बहू का खर्चा आप उठा लें। इससे बेटे के दिल में भी होगा मेरे अब्बा देखो सारा मेरा भी खर्चा उठा रहे हैं। तो लेकिन ये क्या, चलो उसकी पहली तनख्वाह दूसरी तनख्वाह भी आना शुरू हुई, भांजी की उम्र 13.5 साल या 14 साल होगी, तो वो निकाह का पैगाम उसी ने भेजा, उससे बात की, हाँ भाई शादी करनी हो जी करनी है, क्योंकि मेरे बयान में बैठता था, ठीक है, तो कहां करनी है, उसने भांजी की तरफ इशारा किया उधर करनी है। तो वो उनके वालिद से जो मेरे बहनों ही है, मेरे दोस्त भी हैं, आलिम है माशाल्लाह, से बात की, उन्होंने कहा ठीक है भाई हमें रिश्ता चाहिए, बच्ची इकरा स्कूल में पढ़ रही थी, हाफिजा भी थी, उन्होंने कहा तालीम वालीम को एक तरफ रखो, शादी कर दो, इस बच्ची की शादी ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी तालीम याफ्ता से, बच्ची की शादी हो जाए खुद जाहिल हो लड़की ये ज्यादा बेहतर है, खुद बहुत तालीम याफ्ता हो मगर शादी के लिए आदमी सही ना मिले ये मैं कहता हूं ये नुकसानदेह। लड़की की पहचान उसके शोहर से होती है, उम्महातुल मोमिनीन क्या पैगंबर थी, क्यों हुई, नबी की बीवी है, दुनिया के लिहाज से कोई कर्नल साहब की बीवी, ब्रिगेडियर साहब की बीवी, और खुद कर्नल है औरत, मगर बीवी किसकी है, गुटके वाले की, कोई इज्जत होगी उसकी, तो औरत की इज्जत उसके शोहर से, अपनी तालीम का भी दखल होता है लेकिन बाद में किसका नाम लग जाता है उसके साथ, शोहर का। तो इसलिए तालीम भी दें, मैं मना नहीं कर रहा इससे, लेकिन ज्यादा अहमियत किसको देनी चाहिए, کہ بھائی جاہل ہو لیکن تعلیم یافتہ کے پاس جائے یہ زیادہ بہتر ہے، غریب ہو دولت مند کے پاس جائے یہ زیادہ بہتر ہے، دولت مند ہو غریب کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ کھا جائے گا ساری اس کی دولت کو. غریب لڑکی جب دولت مند کے پاس جاتی ہے تو وہی کھاتی ہے نا جو دولت مند کھا رہا ہے، تو اس کی دولت کی کمی پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ایسے ہی ابھی اس کا وہ ہوا تو اس نے کہا یہیں کرا دو، ہم نے کہا کرا دو. تو اس کے جو سسرال والے ہیں نا عجیب سے بانجی کے، وہ والدین والد صاحب سسر تو ہیں نہیں دنیا سے چلے گئے، ساس موجود ہیں، انہوں نے بھی ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جب بیٹا، یعنی میرا بیٹا ہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، بیٹا جب ایکشن لیتا ہے نا میں کر رہا ہوں، جس کو اعتراض کرنا ہے کر لے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو وہ اس کے لڑکی جو ہماری بھانجی تھی اس کے تایوں نے بھی اعتراض کیا، چاچوں نے بھی اعتراض کیا، ترکی سے فون آ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا اتنی کم عمری میں لڑکی کی شادی، میں ڈاکٹر ہوں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو میرے پاس لاؤ، اس کو میں بتاؤں کہ اللہ جب کسی کو بالغ کر دیتے ہیں تو غلط عمر میں بالغ نہیں کرتے. بھوک جب ہی لگتی ہے جب روٹی کی جسم میں ضرورت ہوتی ہے، تو بلوغت میں لڑکی کو بھی ایک اللہ نے اس کی بھی چاہت رکھی ہے، اس کے دل میں یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، مرد میں تو ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فطری تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں. سمجھ آ رہی؟ پیاس لگتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں پی لوں، ڈاکٹر صاحب پانی پی لوں؟ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں تو سوال وہ ڈاکٹر کس سے پوچھتا ہے؟ تو یہ تبھی دیکھو پچھلے پہلے، ہاں 13-13 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو کتنی عمر میں مرتی تھی، 90-90 سال کی دادیاں نانیاں ہم نے دیکھی ہیں. میری دادی کی شادی 15 سال کی عمر میں بتاتی ہیں، 14 سال کی عمر میں ہوئی، اور انتقال 90 سال کے قریب قریب عمر تھی جب انتقال ہوا ہے ان کا. تو یہ ڈاکٹروں کی باتوں کو ایک طرف رکھیں، فطرت کے مقابلے میں کسی کی نہ سنا کریں. عمر ہی ہے یہ نکاح کی بنیادی عمر. ہاں رشتہ نہ مل رہا ہو، یا یہ کہ مل رہا ہو لیکن آپ کو پتا ہے کہ سسرال بڑا خون خوار قسم کا سسرال ہے، خطرناک، بچی کو کھا جائے گا پکا کے، پھر ایک مسئلہ ذرا ہوتا ہے اس میں، تھوڑا لڑکی میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے. کم عمری کی شادی میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی بالغ ہوئی ہے، آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. اس کی عادات اگر خراب ہیں تو وہ پختہ نہیں ہوئی ہوتی، اور اچھی عادات ہیں وہ برقرار رکھی جا سکتی. عمر زیادہ ہو گئی وہ جن عادات پہ قائم ہو گئی ہے نا، مثال کے طور پر اس کو گھر کے کام کاج کی عادت نہیں ہے، اب جب 30 سال کی ہو گئی اب آپ اس سے کام کاج کی عادت ڈال کے دکھاؤ، اس کو نہیں دکھا سکتے، وہ آپ کو مرغا بنا دے گی. اور اگر ماں نے اس کو گھر میں کام کاج نہیں سکھایا، بھی بچی یہ 13-14 سال میں آپ جیسا جائے ڈھال، ایک تو کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے، آپ کو نہیں سمجھائے گی، آپ سے سمجھے گی، آپ اسے کوئی بات سمجھائیں گے وہ سمجھے گی بھائی یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں تو مجھے تو نہیں پتا، وہ اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی. پہلے زمانے میں ساسیں اپنے بیٹوں کے لیے بہوؤں پہ نظر رکھتی تھی کہ یہ والی بچی ہماری ہے لہذا ہمارے لیے بک کر دو، پھر ہم اپنے حساب سے ابھی سے اس کو سکھانا شروع کر دیں گے تربیت دینا، کیونکہ ہمارے خاندان کی. تو یہ کم عمری کی شادی میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. تو میں جلدی سے وہ بتا دوں، انہوں نے پھر وہ برات ورات کا اور رشتے داروں نے کہا ہم تو آئیں گے، اب آئیں گے تو کھانا بھی کھلانا پڑے گا کم بختوں کو. تو پھر وہ بہنوئی صاحب، وہ جو ہمارا بھانجا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے برات تو میں ہونے نہیں دوں گا، پھر یہ آئیں گے تو اب ناک کا مسئلہ ہے کہ یہ واپس خالی ہاتھ جائیں گے، باتیں بنائیں گے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جس دن نکاح ہے اسی دن ولیمہ، تاکہ اس بارات کو ولیمے کے نام سے نمٹا دو. نہیں یاری بات سمجھ، جس دن نکاح ہے عصر کے بعد نکاح کیا، اور ولیمہ چونکہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے تو رخصتی مغرب کے بعد ہوگی. نہیں یاری بات، مغرب کے بعد رخصتی، عشاء کے بعد ولیمہ. بولا بھائی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے، جس نے جو کرنا ہے، میرے خیال ہے 6 مہینے ہونے والے ہیں شادی کو، ہو گئی ماشاء اللہ، اس لڑکی کے جو ہمارے بہنوں ہی ہے اس کا بھی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہو گیا، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ لوگ کو تو افسوس ہو رہا ہوگا، ہماری تو ایسے نہیں ہوئی. اچھا میرے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی کامیاب نہیں ہوتی، غلط لکھا ہے، چھوٹی عمر میں شادی کامیاب ہوتی ہے، اس میں طلاق کے چانس کم ہوتے ہیں. تھوڑا یہ ہوتا ہے بچپنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان، جب لڑکی میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے نا پھر وہ شوہر کو سمجھاتی ہے اور شوہر اسے سمجھتا ہے، اس سے سبق سیکھ کے جاتا ہے، پھر مدرسے میں یا اسکول میں پڑھاتا ہے کہ آج میری بیگم نے مجھے یہ پڑھایا. آج کے نئے دور میں کیسے حقوق ادا کریں بیوی کے، مثلا شاپنگ کے وغیرہ کیسے کروائیں؟
कैसे करवाएं?
तो आप लोग बेहतर जानते हैं भाई, घर में कपड़ा लाके दे दिया करें, घर में ही 15-20 किस्म के कपड़े दिखा दें। हमारे फरमाते थे बीवी से पूछे रंग कैसा चाहिए कपड़े का, रंग ऐसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा हो डिजाइन ऐसा हो, कपड़ा कौन सा वालो, गुल अहमद का हो या किसी और साहब का हो, सारे वो मुमकिन तफसीलात लिख के और जितना उन्हें पर्चे पे लिख के दे दो। खवातीन फिर बहुत छोटी छोटी ऐप निकालती है ना, सारे लिख के दें, फिर उस किस्म के 4-5 कपड़े ला के रख दिए, इनमें से एक सेलेक्ट कर लो। तो वो फिर भी अगर नहीं करें तो फिर वो मसला कुछ और है, यानी फिर वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो फिर मसला जो है ना वो कपड़ों का नहीं है, वो कुछ और फॉल्ट है। समझ आ रही है बात? तो फिर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बाजारों में खवातीन को ना लेके जाएं, बाजार मर्दों के लिए बने, बेहयाई फैलती है बाजारों में। औरतों की नमाज का तरीका वाज़ह करें, कुछ हज़रात कहते हैं औरत और मर्द, इसमें दलाइल है, मैं इंशाल्लाह इस पर एक शॉर्ट क्लिप तैयार करूंगा, औरत और मर्द की नमाज में जो फर्क है दलाइल की रोशनी में। तो ये काफी दिन से सोचा हुआ, वक्त नहीं मिल रहा, तो ये मैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट के क्लिप तैयार करके इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, या मौका मिला तो यहां बयान कर दूंगा, उसी को शॉर्ट क्लिप बना के आप अपलोड कर दीजिएगा, अभी टाइम नहीं है। क्या शौहर अपनी बीवी को तहज्जुद की जमात नमाज जमात से पढ़ा सकता है? बिल्कुल पढ़ा सकता है, सवाब है। तहज्जुद के बारे में तो हदीस में बहुत तरगीब है कि ज़ौजा शौहर को उठाए, शौहर बीवी को उठाए। जहेज के हवाले से फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया था, हमें क्या देना चाहिए? किस हद तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया, आपकी 4 बेटियां थी। उलमा ने लिखा है कि वो जो हजरत फातिमा को दिया था, हजरत अली ही से पैसे लिए थे उसके, और अगर बिलफर्ज एक को दिया बाकी 3 को नहीं दिया, तो वो 3 का क्यों समझ में नहीं आ रहा है, एक का क्यों समझ में आ रहा है? वो दिया भी इसलिए, एक को अगर दिया भी है तो इसलिए दिया है कि आपके दामाद हजरत अली बहुत मिस्कीन गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। बाज दफा दामाद इतना गरीब होता है, आपको पता है मैं बेटी को भेजूंगा तो लड़का तो मुझे पसंद है, इसकी गुर्बत की वजह से मैं इंकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ तो मिले वहां जाके, तो ये नहीं कर सकता चलो मैं कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली से मोहब्बत थी, कई सहाबा ने हजरत फातिमा के लिए पैगाम निकाह भेजा, आपने फरमाया ये किसके लिए? अली के लिए, अली को दूंगा। हजरत अली के पास पैसे ही नहीं, ठीक है ना? तो अब ये तो नहीं कि इस बुनियाद पे आप इंकार कर देते, तो जाहिर है कुछ तो थोड़ा बहुत देना था, घर का वो प्याला व्याला कुछ तो गुजारा हो ना। तो मैं ये कहता हूं आप अगर अपनी बेटी एक ऐसे गरीब आदमी को दे रहे हैं जिसके पास बिस्तर खरीदने के सोफे खरीदने के पैसे नहीं, और वो तो देख ही रहे हैं, सवाल पैदा होता है, तनख्वाहें तो ऐसी देखी जाती है, 1 करोड़ रुपए कमाता हो दो देंगे, तो जिसके पास बिस्तर के वॉशिंग मशीन के डिनर सेट के पैसे नहीं है उसको आप खरीद के दे दें। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जो आदमी इतने लाख का वलीमा खिला रहा है वो उससे आधे पैसों के सोफे और बेड खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, उसको खरीद लें। आज के दौर से ये हो गया सवाल। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।